चतुर्गति में जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए संसारी प्राणी जब तक रत्नत्रय की शरण में नहीं आते, अपने ही आत्मा के भीतर अपने ही गुण, अपनी ही शक्ति, अपना ही स्वरूप जिसको माना जाता है, उसकी पहचान जब तक नहीं करते तब तक वे रत्नत्रय को धारण करके घाती कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं कर पाते। आज तक जितने भी भव्य जीवात्माओं ने केवल ज्ञान की उत्पत्ति को अपने में साध कर केवल ज्ञान प्राप्त किया, वह केवल ज्ञान अद्भुत ज्ञान कहलाता है, संपूर्ण विकसित ज्ञान कहलाता है। उस ज्ञान के उत्पन्न होने के उपरांत फिर उसमें घटन बढ़न नहीं रहता। छद्मस्त अवस्था में हमको प्राप्त होने वाले ज्ञान चार होते हैं, वो घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। घटन बढ़न जिसमें होता है उन ज्ञानों का नाम क्षायोपशमिक ज्ञान है, और जिसके भीतर घटन बढ़न संभव नहीं उसका नाम केवल ज्ञान है। घटन बढ़न संभव तो नहीं है परंतु विकास पूर्णतः हो जिसमें, फूल को जितना खिलना था खिल गया, खिलने के बाद और नहीं खिलेगा, पूर्ण रूप से वह विकसित हो गया। सरोवर का कमल या वृक्ष के ऊपर रहने वाला फूल जितना खिलना होता है वो खिलने के बाद उससे ज्यादा नहीं खिलता, वो अंतिम है खिलना। वैसा ही आत्मरूपी सरोवर में केवल ज्ञान का कमल एक बार खिल गया तो उससे ज्यादा न खिलता है, न मुरझा जाता है, न संकुचित होता है, वो शाश्वत हो जाता है, शाश्वत बन जाता है, शाश्वत रह जाता है। ऐसा केवल ज्ञान वह हम सबके भीतर है। है का मतलब विद्यमान नहीं है, होने की योग्यता है। विद्यमान ज्ञान तो क्षायोपशमिक ज्ञान है, अपने पास अभी तीन ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान। वह ज्ञान की शक्ति अपने भीतर नहीं है, तीन प्रकार की ज्ञान की शक्ति नहीं, पर उस शक्ति की योग्यता अवश्य है। उस योग्यता पर आच्छादन करने वाला, उस योग्यता को कुंठित करने वाला कौन है? कर्म है। कर्मों ने हमारी ज्ञान शक्ति को कुंठित किया है, अनादिकाल से कुंठित किया है। इन कर्मों को समझ करके इन बादलों को जो हटा देता है, हटाने का पुरुषार्थ करता है, वह पुरुषार्थ भी धर्म ही है, धर्म पुरुषार्थ। धर्म धारण करके इन कर्मों को हटाया जा सकता है, और वह धर्म रत्नत्रयात्मक धर्म है, मोक्ष मार्ग स्वरूप धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना स्वरूप है। इसी धर्म की उपासना करते करते, इसी धर्म की शक्ति के बल पर सबसे पहले मोहनी कर्म रूपी अंधकार को हटा दिया, प्रकाश आ गया आत्मा के भीतर। मोहनी कर्म अंधकार के समान है, उस अंधेरे में चलने वाला व्यक्ति सही सही चल नहीं पाता। मोह का अंधकार हमको चलने नहीं देता, और हम चलते चलते जब इसी अंधकार को हटाने के लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ करने की इच्छा करने लगते हैं, तो उस यात्रा के दौरान हमको केवली भगवंतों का उपदेश, उनके सूत्र और मुनियों का सत्संग हमारे लिए प्राप्त होता है। जब सत्संग और सूत्र मिल जाते हैं तो हमारी यात्रा भी सफल होने लगती है। हमको भरोसा हो उठता है कि हम भी इस अंधकार को हटाकर प्रकाश में आ सकते हैं, प्रकाश पा सकते हैं, और उसी प्रकाश में ठीक से चलते चलते अंतर मुहूर्त के अंदर हम उसी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जो अनादिकाल से हमें प्राप्त हुआ नहीं। छद्मस्थ अवस्था के ज्ञान कई बार प्राप्त होते हैं और कई बार छूट जाते हैं। हमको मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान कई बार हुआ, कई बार छूटा, परंतु जिनको विपुल मति मनः परे ज्ञान हुआ वो विपुल मति मनः परे ज्ञान कई बार होता है और कई बार छूटता है, ऐसी बात नहीं है। जिनको विपुल मति मनः परे ज्ञान एक बार प्रगत प्राप्त होता है तो वो नियम से उसी भव से केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है और उसी भव से निर्वाण को प्राप्त करता है। लोकालोक प्रकाशक यह केवल ज्ञान एक अद्भुत ज्ञान है। इस ज्ञान के प्राप्त होने के उपरांत संसारी प्राणी बाह्य और अभ्यंतर, अभ्यंतर आत्मा स्वद्रव्य, अभ्यंतर में स्वकीय आत्मा स्वद्रव्य और बाहर में अनंतानंत चेतना चेतन द्रव्य। चेतन द्रव्य अनंत हैं, अचेतन द्रव्य उससे ज्यादा अनंतानंत हैं पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से। इस संसार में पूछा जाए जीव कितने हैं, अनंत हैं। मोक्ष गए हुए जीवों को भी इसमें शामिल कर लें और जो संसार में हैं, विद्यमान हैं, शरीरधारी हैं, चतुर्गति में हैं, उनको भी मिला ले तो अनंत अनंत ये जीव हो जाते हैं। परंतु इससे भी ज्यादा संख्या में कौन सा द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य के परमाणु जीव से ज्यादा है और प्रत्येक जीव के पास कितने पुद्गल परमाणु हैं, एक बार में हम पुद्गल परमाणुओं को खींचकर जो रखते हैं वे अनंत हैं। कितने हैं उसके लिए बताया, सिद्धों से सिद्ध भगवंत जितने भी हैं सिद्धों से अनंत गुना और अभव्य जीव राशि से अनंत गुने, अनंत भाग प्रमाण कर्म राशि को, इसको बंद कर सकते हैं। सिद्धों से अनंत भाग और अभवी राशि से अनंत गुणे पुद्गल परमाणुओं को प्रति समय जीवात्मा अपने रागद्वेश आदि परिणामों से खींचकर अपने आत्मा में बंद कर लेता है। इसी का नाम आश्रय और बंध है। एक एक जीव के पास प्रति समय इतने पुद्गल परमाणु अगर आ रहे हैं तो प्रति समय खींच करके ज्यादा से ज्यादा उसका स्थिति बंध की अपेक्षा से देखा जाए तो 70 कोटा कोटि सागरोपम तक अपने आत्म प्रदेशों को छोड़ करके जो कर्म नहीं जाता उसका नाम दर्शन मोहित मिथ्यात्व कर्म है, जो 70 कोटा कोटि सागरों पंप तक जीवात्मा के आत्म प्रदेशों के साथ रहता है और उदय में आने के उपरांत बहुत समय तक वही उतने काल तक फल भी देता है। आबादा काल समाप्त होने के बाद उसका जो स्थिति बंध होता है, स्थिति बंध के अनुरूप वह उतने समय तक फल भी दे सकता है, देना चाहे तो उतना काल तक दे सकता है। तो 70 कोटा कोटि सागरोपम तक फल देने वाले ये मिथ्यात्व कर्म, मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी के पुद्गल परमाणु एक समय में खिंचे हुए, एक समय में जो हमने खींचा उसमें विभाजन हुआ है। दर्शन मोहिनी के लिए इतने, चारित्र मोहिनी के लिए इतने, ज्ञानावरणी के लिए इतने और इत्यादि अन्य कर्मों के लिए इतने इतने, इस प्रकार विभाजन हुआ। और विभाजन हुए कर्म प्रति समय जो खिंचे जाते हैं वो विभाजन होते ही रहते हैं और उनका स्थिति वन 70 कोटा कोटि सागरोपम तक रहता है। और जीव इस प्रकार से मिथ्यात्व के उदय में अनंत काल तक परिभ्रमण कर रहा है, तो अनंत काल तक परिभ्रमण कर रहा है और वह 70 कोटा कोटि प्रमाण के जितने भी पुद्गल परमाणुओं को खींच के रखा है वो अनंत काल तक तो फल देंगे नहीं, उनकी सविपाक निर्जरा भी होती रहेगी। अविपाक निर्जरा भी जीव करना चाहे तो बीच में कर सकता है और मोक्ष भी जा सकता है। इस प्रकार सारा संबंध इसके साथ जुड़ा हुआ होता हुआ भी हम कर्म पुद्गल परमाणुओं की संख्या यदि प्रति समय में खींची हुई संख्या को देखते हैं तो वो अनंत पुद्गल परमाणु एक जीव के हिस्से में है, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु एक एक जीव के हिस्से में है। और जीव कितने हैं? अनंत अनंत। और एक एक जीव के हिस्से में अनंत 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 पुद्गल परमाणु हैं और फिर भी पुद्गल परमाणु एक्स्ट्रा भी है। अगर सब कुछ खींच लिया होता तो पुद्गल परमाणु खत्म हो गए होते, ऐसा कम कभी नहीं पड़ते। पुद्गलों को हम खींचते हैं, रखते हैं, भोगते हैं, छोड़ते हैं, सतत नहीं रखते, उनको फेंक भी देते हैं, नया ले भी लेते हैं, पुराने फेंक भी देते हैं, नया ले भी लेते हैं। अविपाक निर्जरा करे तो ज्यादा फेंकते हैं, सविपाक निर्जरा करे तो कम फेंका जाता है। पुद्गल परमाणु को ग्रहण करते हैं, फेंकते हैं, पर ग्रहण करके सतत स्टॉक में रहने वाले, निरंतर रूप से स्टॉक में रहने वाले पुद्गल परमाणुओं की संख्या, कर्म पुद्गल परमाणुओं की संख्या अनंत अनंत है। उसमें औदारिक पुद्गल परमाणु अलग से है, ये और वो हमारे एक के लिए इतने चाहिए, यही तो परिग्रह। ये शरीर परिग्रह क्योंकि परद्रव्य है, निज द्रव्य तो है ही नहीं। शरीर परद्रव्य है, कर्म परद्रव्य है, इनको खींच करके हमने रखा है और हम समझते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। किसी भी व्यक्ति को पूछो उनको पकड़ करके, ये शरीर किसका है, तो मेरा है। क्या अपना है वो? परद्रव्य अपना कैसे हो सकता है? जो अपना है उसका ज्ञान ही नहीं, और जो पर है वो अनादिकाल से हमारे लिए परिचित है और उसको हम पूछते हैं तो मेरा है कहते हैं, मेरा। बहुत विचित्र दशा है संसारी प्राणी की, पर द्रव्य को ही मेरा समझ के चलता है, यही मिथ्यात्व का उदय है। ज्ञान नहीं है उसको, मैं कौन हूं और मेरा क्या है ये पता नहीं है। यही भेद विज्ञान का अभाव होने से संसारी प्राणी को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती। जिसको मेरा कहना चाहिए उसको मेरा नहीं कहता, और जिसको मेरा कह रहा है वो उसका है नहीं, यही अज्ञानता है। और इसी अज्ञानता के कारण दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होता है, क्योंकि ये मेरा कहना अंधश्रद्धा है, मेरा क्या है ये पता नहीं, और जो मेरा नहीं है उसको मेरा कहना, ये क्या अज्ञान नहीं, अंधश्रद्धा नहीं? अंधश्रद्धा है, विपरीत श्रद्धा नहीं, विपरीत श्रद्धा है, और यही मिथ्यात्व का उदय है। अज्ञान के कारण ऐसे कर्म बंध जाते हैं जिन कर्मों में पुनः अंधश्रद्धा उत्पन्न करने लायक कर्मों को बांधकर हम रखते हैं, और उनके उदय में पुनः हम अंधश्रद्धा ही करते हैं। किंतु इस अज्ञान को एक न एक बार कभी सलटाना पड़ेगा, सम्यक ज्ञान के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और भेद विज्ञान के रूप में इसको लाना पड़ेगा। और भेद विज्ञान के रूप में यदि हम लाना चाहते हैं तो केवली भगवान की वाणी ही इसके लिए समर्थ है। उस वाणी का अध्ययन जब तक नहीं करेंगे, दर्शन मोहिनी हट नहीं सकता और अज्ञान दूर नहीं हो सकता। अज्ञान दूर हुए बिना दर्शन मोहिनी नहीं जाता, और दर्शन मोहिनी गए बिना अज्ञान ज्ञान के रूप में कन्वर्ट नहीं होता। परिस्थिति हमारी सामने है इस प्रकार की। ये तो कभी ना कभी हम लोगों को दर्शन मोहिनी को तो दूर करना ही पड़ेगा। लोकालोक प्रकाशक केवली ज्ञानी, केवल ज्ञानी सबको जानते हैं। केवल ज्ञानी से पूछो, हे भगवान ये शरीर किसका है, तो कहते हैं शरीर परद्रव्य है, मेरा नहीं हो सकता। हमको भी ऐसा ही कहना चाहिए, ऐसा ही कहने का संस्कार आना चाहिए। हमको ध्यान में रहना चाहिए हमेशा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और जो मैं हूं और मेरे भीतर जो कुछ होता है वो हमारा होता है। शरीर मेरे भीतर नहीं, मैंने शरीर के चादर को ओढ़ लिया है। कर्म हमारे भीतर नहीं, कर्मों को हमने अपने भीतर घोल लिया है, उसमें नहीं हुआ मैं। कर्म प्रदेश अलग है, आत्मा के प्रदेश अलग हैं। दूध में शक्कर को घोलने के भांति आत्मा के भीतर कर्म के परमाणुओं को हम घोल के रखें, और इसलिए आत्मा का स्वाद भी बिगड़ गया है। जैसे शुद्ध दूध का ओरिजिनल स्वाद बिगड़ करके मीठा हो जाता है, अति मीठा हो जाता है शक्कर डालने से, या पानी में नमक डालने से, नमक को घोलने से, नमक तो दिखता नहीं पर पानी अलग है, नमक अलग है। पानी नमक नहीं हुआ है, नमक पानी नहीं हुआ है, पर ये जरूर है कि नमक का संस्कार पानी के ऊपर अवश्य आया है, उसका ओरिजिनल स्वाद बिगड़ गया है। तो ये अज्ञान भाव, रागादि भाव, ये जो आत्मा के भीतर उत्पन्न हो रहे हैं, ये बिगड़ा हुआ स्वाद है। अज्ञान ये आत्मा का ओरिजिनल स्वाद नहीं है, ये खारापन है, ये ओरिजिनल स्वाद नहीं है। और क्षायोक्षमिक ज्ञान, सम्यक ज्ञान भी ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्षायोक्षमिक ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये बिगड़ा हुआ स्वाद है। ये दूध के भीतर जैसे मीठे शक्कर डालने से मीठा हो गया है, दूध के ऊपर शक्कर का प्रभाव पड़ गया और उसका स्वाद बदल गया, वैसा स्वाद क्षायोक्षमिक ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान है। उदाहरण बहुत अच्छा है सम्यक ज्ञान के लिए, दूध में घुले शक्कर का स्वाद, शक्कर घुले दूध का स्वाद, शक्कर घुले दूध का स्वाद क्षायोक्षमिक ज्ञान है, और नमक घुले जल का स्वाद, ये जीव का अज्ञान भाव यानी मिथ्या भाव है। मिथ्या भाव। इस इन मिथ्या भावों से हम मुक्त हो सकते हैं, पर कब? जिनेंद्र भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि वह समीचीन श्रुत सम्यक ज्ञान द्वादश्यांग वाणी का लाभ इस आत्मा को जब होता है तो आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। यह आत्मा का स्वरूप जब पता चलता है तो संसारी प्राणी जाग जाता है, शरीर सो मैं नहीं हूं यह पता चल जाता है, शरीर मेरा नहीं है यह भी पता चल जाता है, शरीर परद्रव्य है तो ये मेरा कैसे हो सकता, मैं स्वद्रव्य, मेरे भीतर जो कुछ भी रहेगा वो मेरा रहेगा। तो आत्मा के भीतर जब धर्म की उत्पत्ति होती है तो वह धर्म की उत्पत्ति क्षायोपशमिक ज्ञान के काल में भी होती है और क्षायिक ज्ञान के काल में भी वही धर्म वहां रहता है, परंतु उसका फिल्ट्रेशन होता जाता है धर्म का। धर्म भी वह अशुद्ध से शुद्ध, शुद्ध 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 फिल्ट्रेशन होता होता वो प्योर बन जाता है। दर्शन ज्ञान चारित्र भी वे प्योर बनते जाते हैं। हम लोगों के पास भी रत्नत्रय है और भगवान के पास भी रत्नत्रय है और शुद्धों के पास भी रत्नत्रय है। एकदम फिल्टर प्योर पेट्रोल किसके पास है? शुद्धों के पास है, अरहंतों के पास भी नहीं, क्योंकि अभी आघाती कर्मों से बद्ध है, पराधीन है, परतंत्र है। परतंत्र अवस्था में सिद्ध अवस्था का जो सुख है वो अरहंत अवस्था में नहीं है। सिद्धों का सुख सिद्धों के पास होता है, अरहंतों के सुख अरहंतों के पास होता है। अरहंत का सुख पराधीनता की अनुभव करता है और शुद्धों का सुख स्वतंत्रता का अनुभव करता है। बहुत फर्क है। अरहंत को सिद्ध पर्याय की अनुभूति नहीं होती, यही परतंत्रता की अनुभूति है। अरहंतों को सिद्ध पर्याय की अनुभूति नहीं होती और अरहंत पर्याय की ही अनुभूति होती है, और यह सशरीर अनुभूति है, बंधन की अनुभूति है, घाती कर्मों के बंधन में पड़ा हुआ यह आत्मा उसके अनुभूति से छूट नहीं सकता। मैं बंधन में पड़ा हूं, परतंत्र हूं, इसकी अनुभूति उनको भी होती है। अगर न होती तो सिद्ध पर्याय की अनुभूति अरहंत पर्याय में हो सकती थी, परंतु एक पर्याय में दूसरी पर्याय की अनुभूति नहीं होती, ये सिद्धांत है। अरहंत पर्याय में अरहंत पर्याय की अनुभूति होगी और सिद्ध पर्याय में सिद्ध की अनुभूति होगी, ये सिद्धांत है। एक समय में दो पर्याय पे अनुभूति नहीं होती, अरहंत पर्याय में मुनि पर्याय की अनुभूति नहीं होती और मुनि पर्याय में अरहंत पर्याय की अनुभूति नहीं होती, गृहस्थ पर्याय में साधु पर्याय की अनुभूति नहीं होती और साधु पर्याय में गृहस्थ पर्याय की अनुभूति नहीं होती। ये नियम है, ये नैसर्गिक नियम जुड़े हुए हैं। इन्हीं नियमों को सिद्धांत के रूप में अनंत अरहंत भगवान ने व्याख्यायित किया है। ऐसे अरहंत भगवान के केवल ज्ञान के संबंध में जब भी हम सोचते हैं बड़ा उपकार महसूस होता है उनका। छद्मस्तों के ऊपर अरहंत भगवंतों का ही सबसे बड़ा संसार में महान उपकार रहा है। ऐसे केवली भगवान कहते हैं, संसार में रहने वाले सारे संसारी प्राणी अपने द्रव्य गुण और पर्यायों से परिणमनशील होते हैं। उनका उपदेश ऐसा रहा, और यह परिणमन सापेक्ष परिणमन होता है, निरपेक्ष परिणमन नहीं होता। सापेक्ष परिणमन, हमारा परिवर्तन द्रव्यगुण पर्याय से है, तो हमारा द्रव्य अभी अशुद्ध द्रव्य है और अरहंत भगवान का आत्म द्रव्य भी अशुद्ध आत्म द्रव्य है, पर सिद्ध भगवान का आत्म द्रव्य शुद्ध द्रव्य है। वैभाविक परिणति में रहने वाले आत्माएं 14वें गुण स्थान तक रहते हैं और स्वाभाविक परिणति में ढले हुए जीव सारे के सारे सिद्धालय में रहते हैं, सिद्ध अवस्था में रहते हैं। किंतु सिद्धों का ज्ञान और अरहंतों का ज्ञान, इन दोनों ज्ञानों में कुछ भी अंतर नहीं है। आत्मा में अंतर है, एक वैभाविक आत्मा है और एक स्वाभाविक आत्मा है। अरहंत भगवंतों का आत्मद्रव्य, अरहंत भगवंतों का आत्मा वैभाविक क्यों है, किस वजह से है, तो कहते हैं शरीर का संयोग है, कर्मों का संयोग आत्मद्रव्य से है। तो एक द्रव्य से जब दूसरे द्रव्य का संयोग रहता है, संबंध रहता है, तब तक वह वैभाविक आत्मा कहलाता है। और जब इस अवस्था को त्याग देता है, अपने द्रव्य से दूसरे द्रव्य के संबंध को तोड़ देता है, तो वह स्वाभाविक परिणति में आ जाता है। सिद्ध भगवान स्वाभाविक परिणति वाले हैं और अरहंत भगवान वैभाविक परिणति वाले हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और हम तो वैभाविक परिणति वाले हैं ही, लेकिन अरहंतों से ज्यादा ही वैभाविक परिणति वाले हैं। हमारी वैभाविक परिणति बहुत घनीभूत है और अरहंत भगवान की वैभाविक परिणति जरा तरल हो गया, कम हो गया। लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद उस केवल ज्ञान में सारे पदार्थ झलकते हैं, सारे पदार्थ। तो सारे पदार्थ झलकते हैं तो कैसे झलकते हैं, त्रैकालिक पदार्थ झलकते हैं, भूत भावी वर्तमान। उस केवल ज्ञानी को ये पूछो, मेरा अनंत काल के बाद कौन सा भव है, वो भी बता देंगे। और असंख्यात भव के बाद कौन सा भव है, वो भी बता देंगे। पीछे हम अनंत भव के पीछे क्या थे, किस गति में थे, वो भी बता देंगे। इतने इतने भव के बाद पहले क्या थे, ये भी पूछो, वो भी बता देंगे। केवल ज्ञान में क्या नहीं आता, सब कुछ आता है। और एक ही व्यक्ति का आता है क्या, सभी जीवों का? संसार में रहने वाले सभी जीव द्रव्य, सभी पुद्गल द्रव्य और सभी छह द्रव्य, इनके त्रैकालिक परिणति को केवल ज्ञान एक साथ जानता है, एक साथ विषय करता है, इतनी कैपेसिटी उसमें है। किंतु केवल ज्ञान उनको जानने के लिए, जैसे हम इंद्रियों को लेकर के प्रवृत्त होते हैं उपयोग से, वैसे केवल ज्ञान पुरुषार्थ पूर्वक इंद्रियों को लेकर के वस्तुओं को जानने के लिए प्रवृत्त नहीं होता। इंद्रियां काम में नहीं आती। अरहंत भगवान के पास केवल ज्ञान है, उनके शरीर में द्रव्येंद्रियां हैं, इन द्रव्येंद्रियों का उपयोग अरहंत भगवान नहीं करते। आंख काम में नहीं आती, कान काम में नहीं आते, शरीर स्पर्शेंद्रिय काम में नहीं आता। उसके द्वारा हम वस्तु को जाने, ये आवश्यक नहीं है उनको, उनके भीतर, क्योंकि दिव्य केवल ज्ञान प्रकट हो गया, सकल प्रत्यक्ष प्रमाण वाला ज्ञान प्रकट हो गया, तो उस ज्ञान के भीतर आने वाले, प्रतिबिंबित होने वाले पदार्थ स्वयं में झलक रहे हैं, उनके उपयोग को उनको बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। वो भीतर ही सब कुछ जान लेते हैं और जान करके उसी का व्याख्यान करते हैं। तो केवल ज्ञान में जो जो झलकता है वो परिपूर्ण रूप से झलकता है और त्रैकालिक परिणति झलकती है। तो त्रैकालिक परिणति झलकती है और केवल ज्ञान में सब कुछ आता ही है, तो हमारा भविष्य तो सब आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आएगा ही, भविष्य में हमारा क्या क्या होना है वो सभी दिख रहा है कि नहीं? फिल्म दिख रहा है, ये भव भी दिख रहा है, अगला भव भी दिख रहा है, उसके अगला भव भी दिख रहा है, सभी दिख रहे हैं कि नहीं? अनंत अनंत दिख रहे हैं, और भूत के सभी दिख रहे हैं, जो गुजर गए हैं, जिससे हम निकल करके आए हैं वो भी दिख रहे हैं, जितने भवों से हम निकल आए हैं वो भी दिख रहे हैं, और जिस भव में हैं वो तो दिख ही रहा है, पर भावी में भी जो होने वाले हैं वो भी दिख रहे हैं। तो दिख तो रहे हैं, और आप पूछो भगवान के पास जाकर के, हे भगवान हमारा आठवां भव कौन सा है, बोलो आठवां। तो भगवान बोलेंगे कि नहीं आठवां भव? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इनका भव है ये। तो आठवां भव कौन सा है भगवान? आठवां भव तुम्हारा पुनः मनुष्य भव ही है। तो बीच के एक भव में दो भव में आप त्रिरंच रहेंगे, और उसके बाद फिर त्रिरंच गति से भी, क्योंकि संगी पंचेंद्री त्रिरंच देवगति में जा सकता है, इसलिए संगी पंचेंद्री पर्याय से तुम देव बनोगे, और देवगति से फिर एक बार मनुष्य बनोगे। ऐसे बनते बनते तुम्हारे आठवीं पर्याय जो आएगी वो मनुष्य पर्याय रहेगी, परंतु भगवान से और पूछो, ये आठवीं पर्याय आएगी ही आएगी, ये गारंटी है क्या भगवान? आ गया मुख्य विषय अब। अब मजा है, एकाग्र करो मन को, सुनो इसको, कभी नहीं सुना है, ये बहुत तथ्यपूर्ण उपदेश है। भगवान से ये पूछा जा रहा है कि आठवां भव मेरा नियत भव है या अनियत भव? यानी नियत का अर्थ होता है निश्चित, अनियत का अर्थ होता है अनिश्चित, यानी काल की अपेक्षा से। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव, इन चारों को सापेक्ष बना करके केवली भगवान जैसा वो झलक रहा है द्रव्य की परिणति, इस व्यक्ति की आठवीं पर्याय की परिणति जैसा झलक रहा है वैसा ही बताएंगे, और जैसा झलक रहा है वैसा ही बताएंगे। क्या केवल ज्ञान कुछ हेरा फेरी करके बताएगा? जैसा है वता ही वैसा ही बताएगा। और भगवान उल्टा क्यों कहेंगे? यदि आठवीं पर्याय में आप नरक जाने वाले हैं तो भगवान को विकल्प होगा, क्या बेचारा नरक जाएगा, बताने से दुख हो जाएगा, इसलिए आठवीं पर्याय में मनुष्य बता दो? ऐसा तो केवली भगवान कहेंगे नहीं, आपके ऊपर इतनी दया नहीं करेंगे कि आप घबराए ना इसलिए आप मनुष्य बताएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप ये कह सकते हैं क्योंकि छद्मस्त है, किसी के ऊपर ज्यादा ही दया आती है तो नहीं नहीं आप नरक नहीं जाएंगे, स्वर्ग ही जाएंगे, इसलिए अच्छा काम करो। केवली भगवान के केवल ज्ञान में जो कुछ आता है वो कहीं से कहीं किसी भी विषय को बाजू करके अन्य रूप से नहीं कह सकते, जैसा है वैसा ही कहते हैं। और वस्तु स्वरूप की परिणति प्रत्येक समय जो परिणमन कर रहा है इस भव में, फिर दूसरे भव में, दूसरे भव में, तीसरे भव में परिणमन करता जा रहा है, वो पहले से ही झलक रहा है उनमें। और आपने पूछा है कि आठवीं पर्याय मेरी कौन सी है, भगवान ने बता दिया आठवीं है, आठवीं पर्याय में मनुष्य है। तो मनुष्य पर्याय मिलना गारंटी है क्या भगवान? तो ये अगर प्रश्न पूछते हैं तो वो बाद में बताते हैं। पहले तो आपने पूछा कि आठवीं पर्याय कौन सी है, उन्होंने कहा मनुष्य, और फिर मनुष्य ही होऊंगा क्या? तो भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा होता तो मैं पहले से ही बता देता। मनुष्य ही होगे ऐसा कुछ नहीं, मनुष्य भी हो सकते हो, योग्यता है, क्योंकि तुम्हारा उपादान तुम्हारे साथ है, मेरे अधीन नहीं है। तुम्हारी परिणति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे परिवर्तन को मैं नहीं करा सकता। तुम्हारा परिवर्तन तुम्हारे द्वारा होगा, तुम्हारे उपादान द्वारा होगा, उसमें काल द्रव्य जरूर सहयोग देगा, लेकिन मैं किसी भी प्रकार से तुमको सहयोग दे नहीं सकता। जितना काल द्रव्य सहयोग देता है उतना भी मैं दे नहीं सकता। मैं क्या दूंगा सहयोग? तुम्हारे पर्यायों को परिणमन कराऊंगा क्या काल द्रव्य की तरह है? नहीं, काल द्रव्य परिणमन कराने में सहयोग देता है और तुम परिणमन करते हो, तुम अपने उपादान से परिणमन करते हो, लेकिन तुम्हारी योग्यता में दो योग्यता की संभावना है। वहां तुम मनुष्य भी बन सकते हो और तुम त्रियंशी भी बन सकते हो, मनुष्य भी बन सकते हो और त्रियंशी भी बन सकते हो। तुम आठवें भाव में मैं मनुष्य बन सकता हूं और त्रियंशी भी बन सकता हूं, तो सातवें भाव में कौन रहूंगा? तो सातवें भाव में भी तुम मनुष्य ही हो, परंतु मनुष्य पर्याय से मनुष्य भी बन सकते हो और त्रियंशी भी बन सकते हो। भगवान, आपका ज्ञान तो केवल ज्ञान है, ऐसा क्यों बता रहे हैं? वो भी बन सकते हो और ये भी बन सकते हो, खचित रूप से कहो ना, नहीं तो आपका केवल ज्ञान कैसे केवल ज्ञान? खचित रूप से कहो केवल ज्ञान, क्योंकि सब पर्यायों को जानता है। किस पर्याय की उत्पत्ति मेरे द्रव्य से होगी उस पर्याय में, कि आप नहीं जानते? भगवान कहते हैं अवश्य जानता हूं, लेकिन जैसा है वैसा ही जानूंगा ना। क्या जैसा नहीं है वो उसको भी जानूंगा? द्रव्य का स्वभाव, द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य की परिणति, द्रव्य क्षेत्र काल भव को लेकर के जैसा कि जैसा भी उसका परिणमन है, वैसे परिणमन को, उसी भव का परिणमन को मैं जान रहा हूं और जैसा जान रहा हूं वैसा ही कह रहा हूं। तो ऐसे कैसे कह रहे हैं आप केवल ज्ञानी होकर के कि मैं मनुष्य भी बन सकता हूं और त्रियंशी भी बन सकता हूं? उसमें से कौन बन सकता हूं ये बताओ ना, उसमें से कौन सा बन सकता हूं? अगर केवल ज्ञानी ने बता दिया कि तुम मनुष्य ही बनोगे, तो केवल ज्ञानी द्रव्य की वो जो योग्यता है, दो रूप में परिणमन होने की योग्यता, वो केवल ज्ञानी के अधीन तो नहीं है क्या? केवल ज्ञान के अधीन है वो? दो प्रकार की योग्यता केवल ज्ञानी के हाथ में है कन्वर्ट करने की, या स्वयं उपादान की योग्यता से वो दो में से एक होगा, ऐसा है? हाँ, स्वयं की योग्यता से दो में से एक पर्याय को वह प्राप्त करेगा। तो ये तो द्रव्य के उपादान शक्ति ही ऐसी है, द्रव्य का स्वभाव है। द्रव्य काल की अपेक्षा से, नियत काल से भी अपने उपादान से कार्य रूप परिणमन करता है और अनियत योग्यता से भी, नियत योग्यता, अनियत योग्यता, नियत काल, अनियत काल, नियत योग्यता से नियत काल में परिणमन करेगा, इसमें क्या शंका? समझ में आ रहा है ना? कोई शंका? नियत योग्यता से द्रव्य क्षेत्र काल और भव नियत ही रहेंगे, नियत योग्यता से, नियत उपादान से नियत कर्म भी नियत रहते हैं। ये कर्म भी जीव को ऐसे ही फल देंगे, इस प्रकार कर्म भी नियत जो फल देने वाले, क्षेत्र भी नियत, द्रव्य भी नियत, काल भी नियत, इसमें वो जो पुरुषार्थ करेगा वो पुरुषार्थ भी नियत है, सब कुछ नियत है। क्योंकि उपादान ही नियत है तो हमारे कर्म नियत रहेंगे, क्षेत्र नियत रहेगा, काल भी नियत रहेगा, द्रव्य भी नियत रहेगा, सब कुछ नियत ही नियत रहेंगे। तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हमारे पास योग्यता दो प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होती, और वो दोनों प्रकार की योग्यता को केवल ही भगवान जानते हैं। क्या केवल ज्ञान में ऐसा आता है कि जीवों में दो प्रकार की योग्यता तो होती है लेकिन एक ही योग्यता होती है, ऐसा झलकता है क्या? दो हो तो दो झलकेगा क्या? एक हो तो दो हो तो भी एक झलकेगा,
दो तो दो ही झलकेगा।
उसके भीतर दो योग्यता है तो दोनों झलकेंगे। तो प्रत्येक संसारी प्राणी के पास दो दो योग्यताएं होती है और वो योग्यता केवल ज्ञान में केवल ज्ञानी को झलकता है और वो उसके आधार से ही हमारे भविष्य को बताते हैं। केवल ज्ञानी से पूछा उस व्यक्ति ने आठवीं पर्याय में हम क्या बन सकते, मैं क्या बन सकता हूं, तो आठवीं पर्याय को केवल ज्ञान में केवल ज्ञानी केवल ज्ञान से जानकर उसको नियत योग्यता या अनियत योग्यता ये देखेंगे कि नहीं? और उनके आठवीं भव का वह योग्यता नियत और अनियत, नियत है या अनियत, दोनों में से आ रहा है कि नहीं? एक का आ रहा है, आठवीं पर्याय की योग्यता नियत रूप है या अनियत रूप है वो आ रहा है। तो दोनों एक साथ रहते हैं क्या उत्पत्ति के काल में? पर्याय एक, पर्याय एक द्रव्य में एक ही पर्याय की उत्पत्ति होगी, ये सिद्धांत है। एक द्रव्य में एक पर्याय की उत्पत्ति होगी, वह भी योग्यता को लेकर के, जिस योग्यता वाला है उस योग्यता के उपादान के आधार से उत्पन्न होगी, ये भी निश्चित है, ये भी नियम है। तो केवल ज्ञानी को क्या आया, क्या दिखा आठवीं पर्याय? नियत दिखा क्या अनियत दिखा? उन्होंने क्या बताया? तुम त्रिहंश भी बन सकते हो और मनुष्य भी बन सकते हो आठवीं सातवीं पर्याय से आठवीं पर्याय में। सातवीं पर्याय कौन सी है? मनुष्य पर्याय। और उस मनुष्य पर्याय से आठवीं पर्याय में मैं क्या रहूंगा ये पूछा है। तो सातवीं पर्याय उनकी क्या होगी, नियत होगी कि अनियत होगी? अनियत होगी। अनियत हो तो ही आठवीं पर्याय दो रूप में रहेगी, और नियत हो तो आठवीं पर्याय एक ही रहेगी, एक ही रहेगी। तो केवल ज्ञान में एक रहेगी तो एक ही झलकता है, यह है कि एक रहने पर भी दो झलकते हैं? एक रहने पर एक ही झलकेगा, दो रहने पर संभावनाएं दो झलकेंगे। अनियत रहने पर दो झलकेंगे, नियत रहने पर एक ही झलकेगी। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो, एकाग्र करना थोड़ा सा और। केवल ज्ञान केवल ज्ञान है, अनियत कुछ हो नहीं सकता, सब कुछ नियत है। सभी पर्याय क्रमशः ही होंगी और वो नियमित रूप से ही होगी, अनियमित कुछ भी नहीं है। और इसीलिए केवल ज्ञान की अपेक्षा से सभी अनंत पर्याय, भावी अनंत पर्याय ये क्रमबद्ध रहती हैं, क्रमबद्ध। ऐसा क्या हम कह सकते हैं? पर्याय क्रमबद्ध ही होती हैं, इस एकांतपने को क्या कह सकते हैं? क्या इसमें भी कोई अनेकांत है? दृष्टियां दो दी है, नियत की दृष्टि अनियत की दृष्टि। नियत की दृष्टि से यदि आप विचार करते हैं तो क्रमबद्ध ही होगी। अनियत की दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो क्रमबद्धता नहीं रहेगी।
नहीं रहेगी।
और अनियत में भी क्रमबद्धता आपको समझोगे कि नहीं, अनियत कुछ नहीं है, क्रमबद्ध ही होता है ये भी, क्योंकि केवल ज्ञान में तो सब कुछ वैसा ही आता है। तो ये अपनी समझ की कमी होगी, अपनी समझ की कमी होगी। समझ में कमी होने से हम कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, और ये कंफ्यूजन एक बार हो गया ना, फिर कोई भी विषय हमको हल होने वाला नहीं, अटक जाएंगे हम, सब जगह अटक जाएंगे। वस्तु स्वरूप अनेकांतमय ही होता है हर जगह, और अनेकांतमय होने से उनमें अपेक्षाएं बहुत सारी होती हैं, और मुख्य अपेक्षाएं तो हमेशा दो प्रकार की होती हैं। फिर भेद प्रभेद वगैरह करेंगे तो बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। मुख्य अपेक्षाएं हर जगह दो होती हैं, अज्ञान है तो उसके विपरीत ज्ञान भी है, मिथ्या तो है तो उसके विपरीत सम्यक्त्व भी है, विभाव है तो उसके विपरीत स्वभाव भी है, शुद्ध है तो उसके विपरीत अशुद्ध भी है। तो ये मुख्य दो अपेक्षाएं होती है। तो नियत है तो अनियत नहीं रहेगा, ऐसा ग्रहण कर सकेंगे? वस्तु का स्वरूप दोनों रूप होता है, नियत रूप भी अनियत रूप भी। तो यदि हम नियत का ही एकांत ग्रहण कर लें तो क्या दोष आएगा? केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी सब जानते हैं, और उस केवल ज्ञान के आधार से हमने ऐसा विचार किया कि केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, वो क्रमबद्ध रूप से सभी पर्यायों को जानते ही हैं, और इसलिए जिसका जो जिस समय में जैसा जो कुछ होना है वैसा होता ही है, उससे कुछ भिन्न नहीं होता। तो ये दृष्टि मिथ्या है क्या सम्यक है?
एकांत
हो तो मिथ्या है, पर अनेकांत सापेक्ष हो, अनियत सापेक्ष हो, अनियत भी है ना, उसको भूला नहीं जा सकता, हाँ वो सम्यक होता है। यानी नियत कथन अनियत सापेक्ष हो तो सम्यक, और नियत कथन अनियत निरपेक्ष हो तो मिथ्या। ये बुद्धि सुलझानी थी और वो सुलझ गया कि नहीं सुलझ गया? क्या कहीं उलझा हुआ है? उलझा हुआ है तो प्रश्न कर लो, प्रश्न करने के लिए अवकाश है, इसके लिए और समय दिया जा सकता है, कल का प्रवचन यही रहे ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो दूसरा विषय भी ले लेंगे। गुत्थी सुलझाना था, सुलझा दिया, क्योंकि वस्तु स्वरूप का विचार करते समय हम कहीं भी दूसरा पक्ष जब हमको मालूम नहीं रहता तब एक पक्ष का ज्ञान रहता है, और एक पक्ष का ही ज्ञान रहता है, इसलिए हम केवल ज्ञान के आधार को लेकर के हम ये विचार करने लगते हैं कि इस अपेक्षा से ऐसा ही होता है, और केवल ज्ञान ऐसा ही जानता है, और इससे कुछ अन्य नहीं होता। तो अनियत निरपेक्ष नियत पक्ष का कथन करेंगे तो हमारी दृष्टि में मिथ्यात्व आ जाएगा, मिथ्यात्व उत्पन्न होगा, और अनियत सापेक्ष नियत का कथन करेंगे, और उसमें कथन करते समय ही भी लगाएंगे तो सम्यक रहेगा, ही भी लगाएंगे तो भी सम्यक रहेगा। अनियत सापेक्ष नियत पर्याय से जीव आठवें भव में, अगर नियत से बनना हो आठवें भव में ये मनुष्य ही बनने वाला है, और नियत उपादान से बनने वाला है, तो नियत उपादान से बनने वाला जीव द्रव्य नियत, क्षेत्र नियत, काल नियत, भाव नियत, भव नियत, उसके साथ फल देने वाले कर्म भी नियत। इस प्रकार नियतता से ही कार्य की सिद्धि होगी। परंतु व्यक्ति को मालूम है ये नियत रूप से कार्य की सिद्धि क्यों हो गई, क्योंकि आठवीं पर्याय में नियत की ही उपादान, नियत का ही उपादान था। सातवीं पर्याय में नियत का, सातवीं पर्याय में कहो उसको, सातवीं पर्याय में नियत का उपादान होने से नियत रूप पर्याय आठवीं पर्याय उत्पन्न हो गई, ऐसा उसको पहले से ही पता चल गया। किंतु ये पता अनियत सापेक्ष ज्ञान पूर्वक पता चला तो सम्यक ज्ञान है। वो अनियत अनियत सापेक्ष नियत पता चला तो वो सम्यक ज्ञान, और अनियत निरपेक्ष नियत पता चला तो हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान। तो केवल ज्ञानी जानते तो हैं अनंत भावी पर्यायों को, परंतु वो क्रमबद्ध हैं ऐसा नहीं जानते। क्रमबद्धता वहां होती है जहां लगातार नियत पर नियत योग्यता से ही जीव पर्यायों को पाता हो। लगातार इस भव में भी नियत योग्यता से ही हमने भव पाया, पर्याय पाई, उसके बाद भी नियत योग्यता से ही पाई, उसके बाद भी नियत योग्यता से ही पाई, ऐसे लगातार नियत रूप भी रह सकते, या उसके बीच में एक अनियत रूप पर्याय भी हो सकती। पर ये झलकता किस ज्ञान में? केवल ज्ञान में। हमको तो पता नहीं चलता। यदि हम अनियत निरपेक्ष नियत का ही ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस ज्ञान से हम केवल ज्ञान के सहारे से यही विचार करेंगे कि केवल ज्ञान में जैसा आता है वैसा ही होता है और इससे भिन्न कुछ नहीं होता, तो हम न तो केवल ज्ञान को जान पाए और न ही नियत को जान पाए, और अनियत का ज्ञान ना होने से ही यह गड़बड़ हुआ। अनियत की योग्यता भी द्रव्य के भीतर पाई जाती है, पड़ी हुई है, वो भी एक शक्ति है, वह भी एक योग्यता है, उसमें भी अपनी शक्ति के द्वारा जीव द्रव्य में कुछ परिवर्तन लाने की योग्यता होती है या उसमें शक्ति है। ये जब हमें ज्ञान नहीं रहता तो सारा गड़बड़ हो जाता है। तो उस समय हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं निरपेक्ष विचारों में केवल ज्ञानी ने जो जाना है वही होता है। काय को आप अभी इतने दौड़ धूप कर रहे हो, काय को पुरुषार्थ कर रहे हो, काय को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, काल आने पर ही होगा, और काल भी नियत है, केवल ज्ञान में नियत नियत आता है, वो आने पर ही होता है, पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत? नहीं नहीं वो तो हमको अभी करना है। तुम फालतू कर रहे हो, उसको नहीं होना है तो नहीं होगा। सम्यक दर्शन को नहीं होना है तो नहीं होगा, उसका काल भी तो आना चाहिए, अभी क्यों पुरुषार्थ कर रहे हैं आप? ऐसे विचार आएंगे कि नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे। और ऐसे विचार कब आएंगे? अनियत को निरपेक्ष बना करके नियत से, और केवल ज्ञान में नियत नियत नियत, केवल ज्ञान में केवल नियत का ही आता है, ऐसा जब हम धारणा बनाएंगे तब ऐसा होगा। अगर हमको अनियत का भी, अनियत योग्यता का भी ज्ञान है तो ऐसा हमारा ज्ञान विचार नहीं कर सकेगा, क्योंकि वस्तु स्वरूप उभय रूप है। और यदि हमारी दृष्टि में नियत एक ही है और अनियत नहीं है तो एक योग्यता का विनाश हो गया। अभाव हो गया तो अभाव दोष आएगा, अभाव दोष आ गया, अभाव हो जाएगा अभाव दोष आएगा। और यदि नियत को हम नियत रूप में अनियत निरपेक्ष मान लेंगे, अभाव दोष आ गया, तो ऐसे अनियत के अभाव, अभाव से नियत है, तो कोई दूसरा व्यक्ति अनियत को एकांत बना लेता है। अनियत को एकांत बना लेता है, जो कुछ भी होता है नियत से नहीं होता, जो कुछ भी होता है नियत से नहीं होता। हम जब जो करना चाहे तब कर सकते, अनियत से होता है, हो सकता है, ये भी मिथ्या है, ये भी एकांत पकड़ना मिथ्या है, क्योंकि इसमें नियत का अभाव होता है, अभाव हुआ। नियत को एकांत करेंगे तो अनियत का अभाव होगा, अनियत को एकांत करेंगे नियत का अभाव होगा। तो इन दोनों दृष्टि में कुछ फर्क नहीं है, एकांत इसमें भी हो सकता है और एकांत उसमें भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में केवल ज्ञानी कैसे जानते हैं और क्या जानते हैं और कैसे कहते हैं, यह हमको समझ में आने वाला नहीं है। उनके कहे हुए वचनों में अगर एकांतपना आ गया, उभय रूप में से एक ही एकांत का ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया और दूसरा का ज्ञान अभी किया नहीं या हुआ नहीं, उस परिस्थिति में हम जब इसको एकांत में ले लेते हैं तो केवल ज्ञान क्या करेगा और केवली भगवान क्या करेंगे? ये हमारा ज्ञान का दोष है क्या केवली भगवान के केवल ज्ञान का दोष है? हमारे जानने की दृष्टि का दोष है। इसलिए कहते हैं छद्मस्त जीव केवल ज्ञानी द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप का अनेकांतमय जो ज्ञान है उसको अनेकांत रूप से यदि ग्रहण करता है तो तर जाता है, सम्यक ज्ञानी होता है, और एकांत से ही विचार करने लगता है तो विवेकहीन हो करके वो संसार में अटक जाता, चतुर्गति उसके रुकते नहीं। जन्म मरण क्यों हो रहा है इस जीव को? अनेकांतमय ज्ञान नहीं हुआ इसलिए सम्यक ज्ञान का लाभ नहीं हुआ, इसीलिए सम्यक दर्शन का भी लाभ नहीं हुआ। जब हमारे लिए श्रद्धान करने की बात आती है ना, तब श्रद्धान करने की जब बात आती है उसी समय सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट विषय रहता है, इंपॉर्टेंट समय रहता है, वो काल रहता है, बहुत महत्वपूर्ण काल रहता है। उस काल में अगर अनेकांत का ज्ञान हमारे लिए लाभ हुआ है तो झट से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अगर एकांत रूप ज्ञान प्राप्त हुआ है तो एकांत रूप ज्ञान प्राप्त हुआ है तो हम एकांत से ही उसकी श्रद्धा करते हैं, तो श्रद्धा भी हमारी एकांत हो जाती है, श्रद्धा भी एकांत, तो उससे उत्पन्न ज्ञान एकांत ज्ञान, और उससे उत्पन्न विचार एकांत विचार, और उससे उत्पन्न हमारा व्याख्यान एकांत व्याख्यान, और सुनने वाले भी एकांत, सुनने वाले भी एकांती हो जाएंगे, और वो भी एकांती हो जाएंगे, तो उनके द्वारा भी जब उस एकांत विषय को सुनकर एकांत विषय के ऊपर श्रद्धा जगेगी, वो एकांत श्रद्धा, और उससे जो उनको ज्ञान प्राप्त होगा वो मिथ्या ज्ञान, और वो भी जब व्याख्यान करेंगे ये श्रृंखला चल पड़ती है। इसी श्रृंखला को जिनेंद्र भगवान ने मिथ्या मत कहा है, मिथ्या संप्रदाय, मिथ्या मत। इन मिथ्या संप्रदाय और मिथ्या मतों की उत्पत्ति कैसी होती है? तो हमारे पकड़ने की जो शैली है केवली भगवान की वाणी को, उसमें एकांतपना आ गया तो हमारे में मत उत्पन्न हुआ और उसको अनेकांत रूप से ग्रहण किया तो हमारे भीतर सम्यक ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो उभय रूप ज्ञान नियत भी है अनियत भी है, कोई एक द्रव्य का स्वभाव नहीं हो सकता, जीव द्रव्य ऐसा भी मान लो फिर, दर्शन कुछ चीज नहीं, दर्शन गुण कुछ चीज नहीं है, ज्ञान गुण ही है एकांत, क्योंकि दर्शन गुण का अभाव माना। नहीं नहीं, ज्ञान गुण भी है तो ये अनेकांत हुआ। तो ज्ञान गुण को भी लगाओगे तो उसमें अवकाश है, दूसरा भी है कहने के लिए,
दूसरा गौण है।
हाँ, दूसरा गौण हो गया, भी कहने से दूसरा गौण हो गया और ये प्रधान हो गया, मुख्य हो गया। और यदि ऐसा कहेंगे ज्ञान ही है जो कुछ है, तो एकांत हो गया। तो केवली भगवान ने तो अनेकांतमय उपदेश ही दिया है, परंतु अनेकांत क्या है, कैसा होता है, इसका कॉमन परिचय हमारे पास यदि नहीं होता है तो हमको एकांत भी मालूम नहीं और अनेकांत भी मालूम नहीं है। जो कुछ केवली भगवान ने बताया है उस चीज को, एकाध चीज को उठा लिया और उसको श्रद्धा कर लिया और चल पड़े। तो यहां सबको जाने बिना चल पड़ना या श्रद्धान करना या ज्ञान प्राप्त करना, ये मिथ्या मार्ग कहलाता है। मतों की उत्पत्ति छद्मस्थ अवस्था में ही होती है, केवल ज्ञान के उत्पन्न होने के बाद मतों की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि वो एक संपूर्ण ज्ञान है, निर्दोष ज्ञान है, फिल्टर ज्ञान है, वो गलत कही नहीं सकते वस्तु स्वरूप को। वस्तु जैसा है, जैसा झलक रहा है, जैसा झलक रहा है वस्तु को देख करके नहीं बताते, तो आंख में से बैठे हैं, नासिका दृष्टि से बैठे हैं। ऐसा थोड़ी है कि तीन लोग को इधर भी देखा, पहला इधर भी देखा, नीचे भी देखा, नरक दिखे और ऊपर देखा स्वर्ग दिखे, अरहंत भगवान ऐसे देखना पड़ता है उनको? नहीं, ये तो छद्मस्थ हम लोगों को देखना पड़ता है। पीछे कौन बैठे हैं देखो, देखे बिना नहीं बता सकते आप, आपको यूं करके देखना पड़ेगा फिर बता सकते। आपके पास इंद्रियां हैं, क्षौक्षमी ज्ञान है, और इंद्री के पास क्षौक्षम हो और इंद्रियां भी ठीक हो, द्रवेंद्री भी ठीक चाहिए, भावेंद्री में क्षौक्षम चाहिए पीछे बैठे हुए व्यक्ति को देखने के लिए। भावेंद्री खराब है तो द्रव्येंद्री ठीक होते हुए भी क्षौक्षम ना हो तो दिखेगा नहीं, जिसको जन्मांध कहते हैं। जन्मांध की संरचना सब ठीक रहती है, दिख सकता है लेकिन क्षौक्षम नहीं हटेगा, तो क्षौक्षम का ऑपरेशन नहीं हो सकता क्षौक्षम कर्मों को कैसे हटाओगे आप? चक्षु इंद्रियावरणी कर्म जो आकर के बैठे हैं वहां खराबी है, भावेंद्री में खराबी है, उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। द्रव्येंद्री में खराबी हो और भावेंद्री में क्षौक्षम हो तो द्रव्येंद्री को तो ठीक किया जा सकता है और उसमें भी कुछ हद तक ही ठीक करना संभव है। अगर ये डेड हो गए, वो हाँ, वो सब डेड हो गए ना, ये दृश्य को खींचने वाले जो नर रहते हैं यहां पर, सेंटर बोलते हैं उनको, वो डेड हुए हैं तो डॉक्टर भी कहते हैं आपको दिख सकता है लेकिन वो पार्ट्स डेड हैं इसलिए इसमें कोई उपचार संभव नहीं है। तो द्रव्येंद्री में भी ऑपरेशन की एक मर्यादा है, डेड का ऑपरेशन नहीं हो सकता। कुछ संभावनाएं हैं, पार्ट खराब है तो उसको निकाल कर बिठा सकते हैं और वो कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और उसको व्यक्ति को दिखेगा भी। तो भावेंद्री में क्षौक्षम था इसलिए दिखा, भावेंद्री में क्षौक्षम समाप्त हो गया तो नहीं दिखेगा। उदय है, कर्मों का उदय है, सब कुछ ठीक होता हुआ भी कम दिख रहा है तो उदय है वो। तो छद्मस्थ ज्ञान ऐसा है कि एक तो द्रव्येंद्री का आलंबन और भीतरी भावेंद्री में क्षौक्षम की उपलब्धि, ये दोनों हो तो हमारा क्षौक्षमिक ज्ञान वस्तु का ज्ञान बाहर से प्राप्त कर सकता है, वस्तु को देख सकता है, समझ सकता है। देखे भी ना समझेगा भी कैसे, पहले देखेगा, देखने के लिए आंख चाहिए, पहले देखेगा फिर ग्रहण करेगा फिर उसका अध्ययन करेगा फिर चिंतन करेगा, चिंतन करने के लिए सूतक ज्ञान काम में आता है, वस्तु को देखने के लिए, ग्रहण करके स्मरण में रखने के लिए मति ज्ञान काम में आता है, अवग्रह यह हवाए धारणा तक चला जाता है, वो स्मरण में रहता है, फिर स्मरण में रहने वाले उन वस्तुओं को लेकर के जो मति ज्ञान ने ध्यान में रखा है, स्मरण में रखा है, वो धारणा मति ज्ञान के उपयोग में फिट हो गए, भूले नहीं, सालों साल हो गए, तब देखे हुए पदार्थ अभी भी याद है। तो श्रुत ज्ञान कहता है वो जो एक साल पहले देखे थे उस पदार्थ के बारे में मुझे चिंतन करना है। ये धारणामति ज्ञानावरणी, ये धारणामति ज्ञान हमको पदार्थ उठा के दो। तो श्रुत ज्ञान धारणामति ज्ञान से कह देता है कि ये विषय पर्दे पर आना चाहिए, चिंतन करना है देखकर। तो धारणामति ज्ञानावरणी में जो मेमोरी कार्ड में रहता है वो मेमोरी कार्ड पर्दे पर आता है, जैसे आप लैपटॉप में पर्दे पर स्विच दबा करके ले लेते हैं। आप स्वयं श्रुत ज्ञान है, आप उस विषय को जानना चाहते हैं, परंतु आदेश किसको देते हैं? लैपटॉप को। हार्ड डिस्क में सभी सेव है, सब है, लेकिन पर्दे पर नहीं है। और आपको पर्दे पर आए बिना कुछ चिंतन करना संभव नहीं है। विषय क्या है अध्ययन तो करना पड़ेगा, निकालो उसको, तो सेव हो तो निकलेगा। अब सेव ना हो तो नहीं निकलेगा। तो धारणा मति ज्ञानावरण एक हार्डिक्स है, और उस हार्डिक्स के भीतर कई पदार्थ आपके सेव हैं। दो साल पहले देखे हुए, तीन साल पहले देखे हुए, एक साल पहले देखे हुए, सभी सेव हैं। परंतु श्रुत ज्ञान कहता है सेव तो है, लेकिन पर्दे पर लाओ उनको, मुझे चिंतन करना है। तो जैसे ही श्रुत ज्ञान मति ज्ञान को आदेश देता है, तो मति ज्ञान भी जो अपने मेमोरी कार्ड में रहता है उसको श्रुत ज्ञान के सामने पर्दे पर ला देता है, तो श्रुत ज्ञान भी उसको देख करके चिंतन प्रारंभ कर देता है। आप भक्तामूर्त कंठस्थ की हुई है, छह डाला कंठस्थ की हुई है, तत्वार सूत्र कंठस्थ की हुई है, आपके पास सभी उपलब्ध ज्ञान है, द्रव्य श्रुत उपलब्ध है, पर वह सारा का सारा द्रव्य श्रुत मेमोरी कार्ड में है। धारणामति ज्ञानावरणी के क्षोभशम से जो धारणामति ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, जितना भी उसका कैपेसिटी है, 2 GB 3 GB जितना क्षोभशम हो 2 GB 3 GB जीबी बढ़ती जाती है ना, तो जितनी जीबी हो उतना भी जेब बड़ा हो अंदर वो जेब है, जेब में जीबी यानी कैपेसिटी, सेव करने की कितनी कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी के आधार से धारणामति ज्ञानावरणी कर्म का जितना क्षोभशम होगा उतना जीबी ज्यादा है, और जितना कम होगा उतना जीबी कम है, ऐसा रहता है। और उसमें आपने बहुत साल के मटेरियल को स्मरण में रखा है, उसमें छह डाला भी पड़ा हुआ है, तत्वा सूत्र भी है, समय सार भी है, वो भी है, भक्तामर स्त्रोत्र भी है। अब श्रुत ज्ञान कह रहा है मुझे भक्तामर पर चिंतन नहीं करना है, ये धारणामति ज्ञान, मुझे तत्वार सूत्र का मंगलाचरण जो है उस पर चिंतन करना है, मंगलाचरण में कहां क्या है। तो वो श्रुत ज्ञान के पास नहीं है वो मंगलाचरण, वो कौन लेके बैठा है? धारणामति ज्ञान हार्डिक्स, और उसमें सारे ग्रंथ कंठस्थ किए हुए हैं, और जिसको सारे ग्रंथ कंठस्थ हो गए उसकी जीबी बड़ी है, 2 GB नहीं है वो, 6 GB होना चाहिए। और वहां से निकाल करके वो स्वयं धारणामति ज्ञान श्रुत अपने पर्दे पर लाता है, स्मरण करता है, वो स्मरण करता है और पर्दे पर लाता है। तो ये है मंगलाचरण आ गया, हाँ यही है क्या, हाँ इस पर ही मुझे चिंतन करना है, तो दृष्टि पथ पर आता है वो। सभी कंठस्थ है क्या? नहीं है, सभी वो सत्ता में है, धारणामति ज्ञानावरण ज्ञान की सत्ता में पड़े हुए हैं। पर उदय में पर्दे पर कौन आया? मंगलाचरण आया। और किसने बुलवाया इसको? श्रुत ज्ञान ने बुलवाया। अब चिंतन कौन करने वाला? श्रुत ज्ञान। क्या मति ज्ञान ही चिंतन करेगा? धारणा मति ज्ञान। चिंतन करने की शक्ति उसके पास नहीं है, उसमें तो जीवी की शक्ति है, जेब है बस। वो जेब चिंतन नहीं करता, आदमी चिंतन करता है, पर जेब में हाथ डाल करके जब ले लेता है तो पर्दे पर पैसे आते हैं। हाँ, इतना ही पैसा है क्या? हाँ ठीक है। ये चिंतन करने वाला आदमी है। श्रुत ज्ञान आदमी की तरह काम करता है। और हमारी जो दृष्टि होती है, याद करते समय आकर के खड़ी हो जाती है और उसको भूलते नहीं, हम दृष्टि में रखते हैं। यहां ये भी धारणामति ज्ञान ही है। देखना दर्शन है और जो स्थायी रूप से टिका हुआ है, हट नहीं रहा है, ये धारणामति ज्ञान ही है। दृष्टिपद से हटता नहीं, याद आ रहा है, करेक्ट याद आ रहा है और ठहर भी रहा है। ये धारणामति ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभशम की ही देन है। अब वो पर्दे पर जो लिखा हुआ है मंगलाचरण, श्रुत ज्ञान उसको देखकर पर्दे पर, हाँ ये मोक्ष मार्गस्य दिख रहा है ना, दिख रहा है। कौन दिखा रहा है? धारणामति ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभशम से जो उत्पन्न धारणामति ज्ञान है वो दिखा रहा है, अपने पर्दे पर दिखा रहा है। और श्रुत ज्ञान चिंतन कर रहा है, चिंतन कर रहा है। हाँ ये अर्थ है। अब इसका चिंतन खत्म हो गया, अब दूसरा आना चाहिए, उसका अगला सूत्र आना चाहिए। तो फट से अगला सूत्र स्विच दबाता है, हाँ ये चाहिए क्या, ये चाहिए। तो पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमान। चिंतक कौन? श्रुत ज्ञान। पर्दे पर किसने लाके दे दिया? धारणामति ज्ञान। ये ऐसा हमारा चलता रहता है।
हमारी भाषा में
ये सब दार्शनिक विषय हैं। ये दार्शनिक विषयों का ज्ञान यदि हमको नहीं रहेगा, ये तत्व ज्ञान नहीं रहेगा, ये सत्संग से ये तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तो केवल कथा कहानी कहानी सुन करके देवशास्त्र गुरु के उसमें पूजन आदि की क्रियाओं में षटकर्म में उलझे रहेंगे, कल्याण नहीं होने वाला है। तत्वार्थ के श्रद्धान से उत्पन्न जो सम्यक दर्शन होता है वो असली सम्यक दर्शन है। तत्व ज्ञान पूर्वक होता है, उसमें एकांत नहीं आएगा, अनेकांत आएगा। केवली भगवान की वाणी को अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो कहीं भी एकांत मिलने वाला नहीं है। और केवली भगवान ने अपने वाणी के द्वारा सब कुछ कहा भी नहीं है, और जितना कहा वो पकड़ में आया भी नहीं है। उसमें तो अनंत वांश ही पकड़ में आया है गंधर्व परमिष्टि को, और गंधर्व परमिष्टि को भी जितना पकड़ा है, पकड़ में आया, वो अंग श्रुत और अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य के रूप में पकड़ में आया। उनके पास 12 ही घड़े थे, उन्होंने भर लिया। 12 घड़े थे, 12 कलश थे, 12 कलशों में उस वाणी को भर लिया उन्होंने। पर कलश 12 भरने के उपरांत जो गिर गया, वो बहुत गिर गया, अनंत गिर गया, और जाके कहां मिला? वो केवल ज्ञान में ही मिला पुनः। जहां से आता है वहीं जाता है। केवल ज्ञान अनंत है, उसमें वस्तु तत्व का जो प्रतिपादन हो सकता है उसका कोई अंत नहीं, उतना प्रतिपादन हो सकता है और होता है। पर उस अनंत को पकड़ने की शक्ति क्षौभशमी ज्ञान के पास नहीं है। आप अपने श्रुत ज्ञानावरणी कर्म को, मति ज्ञानावरणी कर्म को कितना भी बढ़ा लो, 12 कलश ही भर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अनंतवा भाग है वो, केवल ज्ञान से अनंतवा भाग, यानी समुद्र में से 12 कलश उठा लो भर करके, और उन 12 कलशों से समुद्र की जल की तुलना करो। केवल ज्ञानी के पास उतना ज्ञान है, और छद्मस्त श्रुत संपूर्ण श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का जिनको उत्कृष्ट क्षोभशम है, उनको 12 घड़े भरने की क्षमता है, वो 12 घड़े जो रखे हुए हैं वो 12 ही रहेंगे, 13 नहीं हो सकते, वहां जगह नहीं है। क्षयोपशमी ज्ञान के पास ये जीबी भी बढ़ाते बढ़ाते जाओगे, कहां तक बढ़ाते जाओगे? ऐसा जीवी निकालो जिसमें अनंत भी समा सके। तो क्षयोपशमी ज्ञान को समाप्त कर दो, वैभाविक ज्ञान है ये, सादी शांत है, इसके ऊपर अभिमान नहीं करना, ये मेरा ज्ञान, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, मैं बहुत बड़ा समझदार, ये अभिमान आएगा तो ज्ञानावरणी कर्म का बंध और होगा। इसमें केवल ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है, क्यों? जो क्षयोपशमी ज्ञान को ही सर्वोपरि समझता है और सब कुछ समझता है, तो केवल ज्ञान आएगा क्या उनको? तो उसको ही लेकर के बैठो, कहता है केवल ज्ञान भी, उसी को सर्वोच्च समझते हो, उसी का अभिमान करते हो, मिथ्या अभिमान, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मेरे जितना ज्ञानी कोई नहीं है, छद्मस्त ज्ञान, क्षयोपशमी ज्ञान पर अभिमान। और फिर केवल ज्ञान होगा तो कितना अभिमान करोगे? तो अनंत अभिमान करोगे? वहां पर होगा ही नहीं है। जिन, इसलिए कहते हैं जिनको ज्ञान होता है उनको अभिमान नहीं रहता है, और जिनको ज्ञान नहीं रहता उन्हीं को अभिमान होता है, और जिनको ज्ञान नहीं होता उन किसको अभिमान होता है? जिनको ज्ञान नहीं रहता, ऐसे उस प्रकार के, किस प्रकार के व्यक्ति को अभिमान होता है? तो उस व्यक्ति को अभिमान होता है जिसके पास सम्यक ज्ञान नहीं। देखो, सम्यक ज्ञान, क्षयोपशमी ज्ञान भी अगर सम्यक ज्ञान हो तो अभिमान नहीं करता, क्योंकि वो सभी बाजुओं को जानता है, सभी पहलुओं को जानता है, और तुलना करता है केवल ज्ञान के साथ। अरे, मेरा भी सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञानी का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से कोई फर्क नहीं है, पर क्वांटिटी की अपेक्षा से बहुत बड़ा फर्क है, कलश और समुद्र का फर्क है, कलश और सागर का फर्क है। तो कहता है, अरे वो तो सागर है, मेरे पास कलश क्यों? फिर सम्यक ज्ञान होते हुए भी अनंतवा भाग है, उस सम्यक ज्ञान में से अनंतवा भाग सम्यक ज्ञान का नाम ही श्रुत ज्ञान है, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक मति ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान, सम्यक मन परि ज्ञान, चारों को भी मिला लो तो अनंतवा अंश है, अनंतवा अंश है। और ऐसे अनंतवे अंश के ज्ञान को धारण करने वाला भी अभिमान कभी करता ही नहीं है। अभिमान कौन करता है मालूम? हाँ, मिथ्या ज्ञानी ही अभिमान करता है, क्योंकि उसको शाब्दिक ज्ञान हो गया और वह सबके लोगों के बीच में गया, तो इनको जो आता था उनको नहीं आता है, इनको जो आता था उनको नहीं आता है। आपको मंगलाचरण याद ही नहीं अभी तक? मोक्ष मार्ग से नेता नमोकार मंत्र भी है क्या नहीं? फिर अरे इतने पीछे हो, अभिमान करता है, अभिमान करता है, मिथ्या ज्ञान अभिमान करता है, सम्यक ज्ञान अभिमान कर ही नहीं सकता, वो निष्कशाई होता है। और ये अभिमान अनंतानुबंधी कषाय के उदय के बिना नहीं होता। क्षयोपशमी ज्ञान पर जो अभिमान होता है वो अनंतानुबंधी मान के उदय में होता है। और अप्रत्याख्यानावरणी कर्म के उदय से चौथे गुणस्थान में जो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक श्रुत ज्ञानी है, वो अभिमान नहीं करता, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरणी कर्म, मान कर्म के पास, मान कषाय के पास विनयशील हो जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति कम हो गई। अनंतानुबंधी की शक्ति प्रौढ़ शक्ति, वो विवेकहीन शक्ति है, और अप्रत्याख्यानावरणी मान के पास वो मंद पड़ गया ना, उसकी क्वालिटी, उसका बल, उसकी शक्ति कम हो गई। तो इस कम शक्ति वाली कषाय के पास अपने ज्ञान के ऊपर अभिमान करने की बुद्धि रहती नहीं। क्यों नहीं रहती, किस कारण से नहीं है? तो कहते हैं उस कषाय के उदय में, उस गुण स्थान में जो भी ज्ञान है वो सम्यक है। सम्यक ज्ञान दोनों पहलुओं को जानता है, भगवान के साथ अपनी तुलना करता है। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये ज्ञान है तो मेरे से बड़े तो भगवान है ज्ञान में, और मेरे से ज्यादा ज्ञानी भगवान है तो मुझे भी उनके समान बनना है, इसलिए उनके ज्ञान को लेकर के अभिमान नहीं करता। और अज्ञानी को केवल ज्ञान भी पता नहीं रहता, केवल ज्ञानी भी पता नहीं रहते, और अन्य इनसे भी बड़े जो ज्ञानी रहते हैं वो भी पता नहीं रहता। विवेकहीन होकर के अनंतानुबंधी मान कषाय के उदय में मैं ज्ञानी ऐसा कह करके ज्ञान का अभिमान करने लगता है, इसी से केवल ज्ञानावरणी का बंद होता है। घनीभूत बंद होता है, पांचों प्रकार के ज्ञानावरणी कर्म का बंद यहां होता है। और यह ज्ञानावरणी कर्म का बंद पहले गुणस्थान से दसवें गुणस्थान तक होता ही रहता है। किसी गुणस्थान में स्थिति अनुभाग भले ही कम होता 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 ऊपर ऊपर चला जाता है, लेकिन होता रहता है। दसवें तक ही क्यों होता, आ गया ना, घूम फिर करके आ जाओ, ये क्यों होता? तो लास्ट में वही उत्तर उसका, रागादि भाव, मोह भाव, मोह राग भाव। इस राग भाव को क्षय करते ही, मोहनी कर्म को क्षय करते ही, रागादि भाव हटते ही केवल ज्ञान स्वयं आपके पास आता है, आपको बड़ा बना देता है। नहीं नहीं, आप छोटे नहीं रहना, मेरे समान बन जाओ। भगवान उठा लेते हैं आकर के आपको, जो मोह का क्षय करता है भगवान उठाकर सम्मान करते हैं, शाबाश, ऐसा पहलवान होना चाहिए। मोह के पहलवान को जो पछाड़ करके दसवें गुणस्थान से ऊपर उठ गया, भगवान भी उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, आओ अंतर मुहूर्त के बाद तुमको भी मैं भगवान पद दे करके मेरे सामने बिठा देता हूं, मेरे समान बिठा देता हूं, आ जाओ। और जिनको केवल ज्ञान होता है वो केवल ज्ञानी और दूसरे केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी केवल ज्ञानी बनते हैं। केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी के सामने कोई अहंकार नहीं। केवल ज्ञानी, तुम्हारे पास जो केवल ज्ञान है वो पहला का जरूर है, लेकिन वो ओल्ड है, ये तो फ्रेश है, न्यू। ओल्ड और न्यू का अभिमान आएगा क्या? दोनों समान है, समुद्र है, पर ये ओल्ड है तो वो कहते हैं ओल्ड है लेकिन गोल्ड है। वो गोल्ड पने का अनुभव नहीं करते और ये ताजे पने का अनुभव नहीं करते, अभिमान नहीं करते, दोनों ही निर्भिमानी होते। ऐसा केवल ज्ञान हम सबके पास है, इसलिए वर्तमान में उपलब्ध जो श्रुतक ज्ञान है, इस श्रुतक ज्ञान के प्रवाह को समीचीन बनाओ। साधुओं के सत्संग से सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होती है, बार बार साधु सत्संग करो, अन्यथा छद्मस्थ वाणी कई प्रकार के संसार में उपलब्ध है, उसका अध्ययन करोगे, भटकोगे, अटकोगे तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा? अपने आत्मा दुखी होगी, चतुर्गति में भटकती हुई और रोएगी, दुखी होगी। अपनी आत्मा को चतुर्गति से बाहर लाना है, और बाहर ला करके इसको केवल पहले तो सम्यक दर्शन दिलाना है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दिलाने के लिए ही सच्ची जिनवाणी जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनका अध्ययन हमें करना चाहिए, वहां पर हमारे लिए शरण है, वहां सम्यक तो उपलब्ध है, उसमें सम्यक दर्शन मिलेगा, उसमें ज्ञान मिलेगा। और उसका उसके जानकार जो सत्संग साधु परमिष्टि हैं, आचार्य परमिष्टि हैं, उपाध्याय परमिष्टि हैं, अरहंत परमिष्टि तो साक्षात नहीं है, ऐसे साधु सत्संगति से भी हमारे लिए सम्यक दर्शन सुलभता से उत्पन्न होता है, क्योंकि हेयोपादे का ज्ञान जितना साधु के माध्यम से हमें मिलता है वैसे स्वयं शास्त्र पढ़ करके हम निकाल नहीं सकेंगे, क्योंकि वह कैपेसिटी हमारे पास नहीं है, वो सौक्षम नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो उपादान हमारे पास नहीं है। किंतु इस उपादान के लिए जब सत्संग की प्राप्ति होती है तो अपना उपादान उज्ज्वल होता है, मंच जाता है और ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम अपने आप बढ़ जाता है। जैसे ही सम्यक ज्ञान की उपलब्धि हो गई, श्रुत ज्ञान सम्यक ज्ञान की उपलब्धि हो गई, चिंतन बढ़ जाता है, विषय समीचीन मिलने लगता है। इन समीचीन विषयों के आधार से जब हम अपने आप में अपने को जानकर अपने में आएंगे, अपने को समझेंगे, अपने को निष्कषाय करेंगे तो निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग में आकर मोक्ष मार्ग का आनंद उठाएंगे और उससे परम कल्याण होगा, आत्मा का कल्याण होगा। ऐसा आत्मा का कल्याण सबका हो ये हमारा मनोभाव था और हमने आज उस विषय को बताया जो बिल्कुल क्लियर हो गया, आज हो गया ना। हाँ, और कोई भी इस संबंधी शंका उठती हो तो आप लिख करके रखें, शंका को भूले नहीं, और अगले प्रवचन में उन शंकाओं का निरसन अवश्य करेंगे।
परम पूज्य सर महाराज की जय।